तो वो क्या करेगा, पानी को छोड़ देगा, दूध सब पी लेगा और पानी रह जाएगा। उसी तरह से जो श्रोता आत्मविवेक वाली बातें हैं उनको ग्रहण करता है और अनात्मवादी को छोड़ देता है, ऐसे श्रोताओं को हंस कहते हैं। जिस प्रकार से तुमका पढ़ाया जाता पढ़ाते हैं, वो पढ़ लेता है मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्नता देता है। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भी तुलसीदास चंदन जिसे राधे राधे कृष्ण कृष्ण उसको कहला ले कह देता है, और उसको गंडीदास सिखा दो तो वो भी कह देता है। तो बहुत परिश्रम से सूत्र सिखाया हुआ है, किंतु यह सूत्र सुन करके उपदेश को पालन नहीं करता। अभी बिल्ली आ जाए थप्पड़ मार दे यार के ऊपर में, तो वो कृष्ण कृष्ण नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, चे कर्तव्य प्राण छोड़ देगा। तो वैसे कृष्ण की कथाओं को सुन करके सार को ग्रहण नहीं करके अंत समय में या किसी समय में कृष्ण को भूल जाते हैं और कहते संसारिक विषय की बातें ही कहते हैं, किंतु भागवत भी सुन आते हैं, तो ये लोग ऐसे हैं। ये प्रवर नहीं इसलिए कि सुनते हैं किंतु भूल जाते हैं बेचारे, और दूसरों को आनंदित करता है, श्रोता कहता है ना, वो स्वयं भी सुन करके दूसरों को भी शिक्षा देता है। बड़े बड़े पंडित लोग हैं किंतु भागवत का आचरण नहीं करते, पैसे का बनाने का धंधा कर दिए हैं, इसलिए वो आएगा कि कल के उपाख्यान में श्रवण के महात्म में कथा का सार नहीं रह गया, क्यों, अपने अर्थ के लिए लालसा से सब जगह सुनाते हैं और कथा का दूसरों को सुना रहे हैं किंतु कथा का सार इसलिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए सुनाते हैं, दूसरों का परमात्मा के लिए कल्याण के लिए नहीं सुनाते। तो दूसरों को जो आनंदित करता है किंतु पूरा आचरण नहीं करता, उसको सूत कह दिया, सुनता है और सीखता भी है किंतु आचरण नहीं कर पाता, तो अभी इसका कल्याण हो जाएगा, जब वो कभी साधु संघ में पड़ गया बस इसका कल्याण हो गया। और मछली कैसे नी मौन होकर के अपलक रह करके आंखों से देखती थी, खीर सागर में दूध पीती रहती है, खीर सागर की मछली को मील कहते हैं, यहां पर मील खीर सागर में रहती है, उसमें पलक होते नहीं है, बोलती नहीं है, पान करती रहती है, ये है नील। कथा में बोलने वाले वो उनके लिए फिर अवर में बतलाएंगे, कथा ने डिस्टर्ब कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया तो वो गड़बड़ हो गया, इसलिए मीन को रखा प्रबल में, ये बोलेगी नहीं कुछ, आंखों से कथा का पान करते, वैसे कानों से कथाओं का जो पान करने वाले हैं उनको कहते हैं मीन। अच्छा, और जो अवर वाले हैं माने कनिष्ठ वाले, पहला हुआ ब्रेक, ब्रेक ब्रिक ब्रिक माने भेड़िया, बेनी की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयंकर गर्जना करता है, भेड़िया है गर्जन करता है, तो उसे हिरण इत्यादि डर जाते हैं। तो यहां पर हिरण इत्यादि बदला श्रोताओं को, अच्छे श्रोताओं को, भेड़िया जैसे गर्जन करके उनको डरा देता है, ऐसे ही बीच बीच में जोर जोर से जो बोल करके और सब श्रोताओं का ध्यान भंग कर देते हैं और वहां पर बैठे भी दे जाते हैं, उनको कहा गया सुनते हैं बस बीच में अपनी प्रतिष्ठा के लिए, कभी कभी शरीर को झोंक देते हैं, कभी कपाने लगते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी बोल उठते हैं इन लोगों को। ये ब्रिक हुए, हिमालय के शिखर पर एक ब्रुद्ध जाति का पक्षी होता है, किसी की शिक्षा पर बातें सुन करके वैसे ही बोला करता तो है किंतु उसे कुछ भी अपना लाभ नहीं उठाता, इसलिए भागवत की कथाओं को सुन करके सीख तो लेता है किंतु न अपना कल्याण करता है न दूसरों का कल्याण करता है,
बस जागतिक वस्तुओं को बटोर लेता है, ये हो गए गुरुंदर। गुरुंदर वृष माने बैल। जिस प्रकार से मीठा अंगूर हो या कड़वी खली हो जो बैलों को दिया जाता है, दोनों को वो एक ही समान खाते हैं, ऐसे उसी प्रकार सभी बातों को ग्रहण करते हैं, भागवत के सार को नहीं ले पाते। आसार और सार, सब शास्त्रों की बातें सुनते हैं, उनमें ये ताकत नहीं होती कि सार वस्तुओं को ग्रहण कर ले, आसार को छोड़ दें। ऐसे हो गया ये वृष। और जिस प्रकार से ऊंट नीम की पत्ती हो और साथ ही साथ में आम हो तो नीम की पत्ती ही खाएगा, आम नहीं खाएगा, ऐसे ही जो लोग भगवान की कथाओं को छोड़ करके विपरीत संसारी बातों में रमते हैं और कभी कभी कथा में भी आ गए, उसको ग्रहण नहीं करते सार को, ये इस तरह से ये लोग हैं ऊंट की तरह में। इसी तरह से और भी भाग है, मैंने उद्धव जी कह रहे हैं, मैंने विस्तार से नहीं यही संक्षेप में बताया, इसलिए जो पहले कहे गए हैं चाकर या हंस, उसकी भांति कथाओं को सुन करके उसको अपने जीवन में पालन करें तो उससे जल्दी काम होकर के कृष्ण प्रेम मिलता है, भव सागर से भी तर जाते हैं। अब फिर एक कुछ वक्त आते हैं, श्रीमद भागवत का एक निर्गुण, ये तीनों गुणों के अंतर्गत में है किंतु एक निर्गुण से उपाय होता है। जैसे परीक्षित महाराज जी थे, सुखदेव गोस्वामी हैं, नारद हैं, ये निर्गुण से होता है। भागवत के लिए करण के चार तीन प्रकार के, सात्विक राजसिक तामसिक और निर्गुण, ये चार प्रकार के श्रोता और वक्ता होते हैं, जिसमें जिस ये कथा में भागवत की कथा में राजसिक समस्त प्रकार की यज्ञ की तैयारी की गई हो, बहुत सी सेवा पूजा के लिए बहुत सी चीजें उसमें रखी गई है, और बड़े परिश्रम के साथ में उत्तावली में सात दिन का जो किया हुआ भागवत जो होता है होता है, उसका सेवन राजस है, राजस सप्ताह है, बड़ी तैयारी के साथ में गाजे बाजे अपर तरह के विपुल साधनों से जो किया जाए और सात दिन में समाप्त हो, सात दिन में समाप्त करना ही है, तो ये हो गया राजस। एक या दो महीने में धीरे धीरे रस का स्वादन किए हुए परिश्रम के साथ में, सावधानी के साथ में, श्रद्धा के साथ में जो समन होता है ने? उसको सात्विक सेवन कहते हैं। सात्विक सप्ताह, सात्विक माने एक माह वाला। तामसिक सेवन वह है भूल से कभी बीच में छोड़ दिया गया, आरंभ किया बीच में छोड़ दिया, फिर आरंभ किया फिर छोड़ दिया, और उसमें धर्म अर्थ काम को अपना लक्ष्य बनाया, ऐसा सब सुनना ये तामसिक हुआ। जब वर्ष महीना दिनों का कोई नियम नहीं, कौन दिन कौन नक्षत्र कौन घड़ी कौन राशि में अभिजीत मुहूर्त में या कौन सा, कोई भी नियम नहीं है। परीक्षित महाराज जी के वो सात दिन जीवित रहने वाले थे, अंतिम उनका दिन था, इसलिए सात दिन उन्होंने सुना, इसलिए सात दिन नियम श्रवण करेंगे, एकदम विधि नियम बांध लेंगे ये नहीं, उसके लिए कोई भी दिन कोई भी मुहूर्त कुछ भी नहीं, बल्कि जिस समय भागवत श्रवण हो वही सबसे अभिजीत मुहूर्त का भी बात है, वही सबसे शुभ समय। दीक्षा के लिए बहुत से लोग दिन देखते हैं हरिनाम के लिए, जिस दिन उनका किसी व्यक्ति का हरिनाम और दीक्षा हो गुरु के यहां गया, जिस दिन दीक्षा दे गया वही सबसे श्रेष्ठ दिन है, वही सबसे नक्षत्र राशि मुहूर्त कारण इत्यादि सबसे वही श्रेष्ठ है। ये निर्गुणों के लिए बतला रहे हैं, जब वर्ष महीना और दिनों का नियम छोड़ करके वर्ष मास आदि नाम तू विमुच्य नियम आग्रह, नियम और आग्रह छोड़ करके सर्वदा प्रेम भक्त ही वो सेवनम निर्गुणम महत। निर्गुण सेवन क्या है? इन सब को छोड़ करके ने? प्रेम के साथ में श्रवण करने का नाम ये है निर्गुण सेवन। राजा परीक्षित सुखदेव के संवाद में जो सेवन हुआ वो निर्गुण हुआ। 7 दिन का क्यों हुआ? इसलिए 7 दिन का ही समय था। इसलिए करें दिनों की संख्या के अनुसार में जो है वो तो केवल बचा हुआ दिन था, इसलिए किया गया। इस कथा का कोई भी नियम नहीं, प्रेम से सुनना ही एकमात्र नियम है। जहां पर भी सुन सकता है, कहीं पर भी सुन सकता है, तीर्थों में अधिक फल प्रदेगा। विशेष करके वृंदावन के कुंज गनी में, उसमें भी सेवा कुंज में इसकी महिमा अपार है। विशेष करके हम लोग 9-10 दिन कर रहे हैं, इसलिए मसमिन की कोई लंघन हो रहा है। ये जेठ महीना आ गया, इसलिए ऐसा न समझेंगे। ये समस्त महीनों का जेठा भाई है, इसलिए ये ज्येष्ठ है। और वृंदावन में हो रहा है, भागवत के लिए कोई नियम नहीं, वही प्रेम का नियम है। इसमें जहां कहीं जब भी हो जाए, प्रेम गली, मान गली, दान गली, सेवा गली, ये सब इस जगह में मिलित होती हैं। सबका चौमहान चौमुहाना। और कृष्ण जी राधा जी की सेवा कर रहे हैं, वो ये स्थान बहुत सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूं कि यहां पर कथा सुनने के लिए राधा कृष्ण भी उपस्थित हो जाएंगे तो और की तो बात क्या। उद्धव भी वहां उद्धव कुंड से यहां पर आ जाएंगे कथा सुनने के लिए। आप प्रेम से सुनिए और इसका केवल प्रेम फल ही अंतिम लक्ष्य रखेंगे, बस सब सिद्धि हो जाएगी, कामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी और वो भी हो जाएगा। अब फिर कह रहे हैं यद्यपि भागवत की कथा धनम पुत्रांश तथा दारान वाहन आदि जसो गृह असपात्म न च राज्यम च दद्यात भागवती कथा। भागवत कथा ये यद्यपि ये देती है, यद्यपि इसमें लगा दिया। क्या यद्यपि देती है? धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े, वाहन, रत्न, भवन, मकान, निष्कंटक राज्य इत्यादि, मुक्ति इत्यादि सब कुछ देने में ये श्रीमद् भागवत सब कुछ देने वाली है। यद्यपि तो भी भाई जहां तक हो सको सकाम मत बनो, सकाम मत बनो। यद्यपि कोई सकाम भी करता है तो ये एक आशा है कि सकाम की काम भी पूर्ण करके और अंत में साधु संघ से क्या करेगी वो कथा अंत में ले जाएगी, किंतु थोड़ा सा समय लग जाएगा। अकामो सर्व कामो मुक्त काम उतार वित्त प्रेम भक्ति जो गई जगती और संपर्क। और कह रहे हैं श्रोता के अनुसार में इसका फल होता है और वक्ता के अनुसार, वक्ता और श्रोता उत्तम निर्गुण कोटि का होगा तो निर्गुण फल मिलेगा। विशेष करके वक्ता के ऊपर में अधिक है। प्रतिदिन अब इसका नियम बतला रहे हैं, कुछ पालन करने के लिए योग्य विधियां हैं, आप लोग भी उस नियमों का पालन कर सके तो अच्छा है। शुद्ध श्रोताओं के लिए कोई भी नियम नहीं, ये पहले समझ लीजिए, निर्गुणों के लिए, किंतु फल प्राप्ति वालों के लिए कुछ नियम जरूरी है। और सब हम लोगों को भी कुछ नियम करना चाहिए, क्योंकि प्रेमा भक्ति तो चाहते ही हैं, इसलिए कहते हैं प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान करें भाई। सब श्रोता लोग वक्ता लोग प्रातः काल में स्नान करें, जिसको इच्छा है काशी में जमुना जी बह रही है उसमें कर ले, या यहां पर भी जो कल में पानी आ रहा है जमुना जी का ही पानी है, अपने अपनी सुविधा के अनुसार में शरीर के अपने अनुकूल की दृष्टि से यहां कर लेंगे या वहां कर लेंगे। यहां करके भी जमुना जी का दर्शन और आचमन किया जा सकता है, जिनका समर्थ है वहां पर भी कर सकते हैं प्रातः काल में स्नान करें। अपना नित्य कर्म पूरा करेंगे, नित्य कर्म माने भगवान का नाम, अपना संध्या आनिक मंत्र जप इत्यादि कर लेंगे। फिर भगवान का यहाँ पर चरणामृत आपको स्वाद में मिल जाएगा, चरणामृत ले लेंगे। फिर श्रीमद्भागवत की पुस्तक और गुरुदेव दोनों का पूजन और अर्चन करेंगे प्रतिदिन। भागवत कथा से पहले गुरु जी और भागवत की पूजा करके, पहले दिन हम लोगों ने आज कृष्ण की, व्यास जी की, नारद जी की, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित इत्यादि की पूजा की, और कल भी हम लोग वहां पर स्थापन करके इन सब लोगों की पूजा की। स्मार्टों की तरफ में हम लोग नवग्रह और गणेश इत्यादि की पूजा नहीं करेंगे, किंतु गणेश जिनकी उपासना करते हैं उन्नीसिंह जी की, उस परा सरस्वती जी की, व्यास जी की, नारद जी की, ब्रह्मा जी की, जो आदि इसके हैं, कृष्ण की, राधा जी की पूजा हम करेंगे। इसमें आप लोग कोई शंका की बात मत करेंगे। इससे यहाँ पर जितने उपग्रह नवग्रह इत्यादि सब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर के अपना सार्थक मानेंगे। यदि यहाँ की धूल भी लग जाए और कथा के कण भी मिल जाए तो वो अपना सार्थक समझेंगे, इसलिए कोई भी संदेह की बात मत करेंगे। लाख पंडित कोई हो, करोड़ों पंडित हो, उसको वेद इत्यादि सब याद हो, किंतु वैष्णव नहीं है, सिर्फ वैष्णव तिलक नहीं, गले में माला नहीं, और विष्णु की, भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता, तो उसके मुख से पाठ सुनने से मोक्ष इत्यादि में जाकर के जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक वैष्णव भले ही विद्वान न हो, संस्कृत का श्लोक भी उच्चारण नहीं करता हो, किंतु कृष्ण में अनन्य भक्ति हो, उसके मुख से ही भागवत सुनना चाहिए। अवैष्णव मुखोद्वीर्णम पूतम हरि कथा मृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्ट यथावत। यदि वैष्णव है तो उसके मुख से, भले विद्वान नहीं हो, और यदि विद्वान वैष्णव मिल जाए, सुखदेव की तरह इन बालक भी मिल जाए, कोई भी है, उसे ही भागवत सुनना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान लोग त्रिकुंड इत्यादि भस्म धारण करके श्रीमद् भागवत को एकदम खस्त सुना नहीं, उससे हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं। हमको तो वैष्णव शोका और वैष्णव वक्ता होना चाहिए, इसलिए वैष्णव वक्ता के मुख से हम लोग भागवत श्रवण करेंगे। तो कहते हैं कि हाँ, गुरु जी की और पुस्तक श्रीमद् भागवत की पूजा अर्चना आरती करके, और इन जीवों को कहा मैंने, नव जोगेंद्र है, नारद ऋषि जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, इनकी पूजा। और सखोज मंत्र जितने देवता हैं, गणेश इत्यादि, इंद्र प्रभृति, जितने देवता हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, हम सबका वाहन करेंगे। सब लोगों के लिए स्वागत है, हरि कथा में पधारें और श्रवण करें, सबका कल्याण हो। इसमें कथा में मौन रहे, मौन रहे, कथा सुने, प्रेम नींद ना आने पाए, और दूसरों से बातें मत करें, सब भावपूर्वक इसका एक एक शब्द पीने की चेष्टा करें। इसीलिए कहीं नींद ना आ जाए, आलस्य ना आए, इसलिए भोजन न करके यदि हो सके तो दूध और खीर का केवल सेवन करें और मौन होकर के सुने, जिससे कि गंदी हवा न निकले, वायु इत्यादि, उसके लिए सभी अल्प भोजन आहार करे, निद्रा आलस्य प्रमाद न आने पाए और पवित्र रूप से रहे, नहीं तो दूसरों को भी डिस्टर्बेंस होगा, अपना भी डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए वक्ता श्रोता दोनों नियमित रूप से अल्प आहार, यदि हो सके तो दूध या फल इत्यादि का करें, और नहीं तो जिसका जैसा है भागवत प्रेम से सुनने की आवश्यकता है, किंतु ये सब का विचार करके देखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, जहां तक हो सके भूमि पर शयन करें, भूमि पर शयन करें, कुछ कष्ट तो कृष्ण के लिए करना ही पड़ेगा, तो जो श्रोता है जहां तक हो सके ऐसा नियम कर ले तो और अच्छा है, पलंग इत्यादि की जरूरत नहीं होगी, मोटे मोटे तकिया गलीचों की जरूरत नहीं होगी, और विलासिता की जरूरत नहीं होगी, जहां तक हो सकेगा हम लोग उसी नियमों का पालन करते हुए करें, अधिक विलासिता में राजसिक ठाट में हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो भगवत की कथा अच्छा भी हो जाएगी और विलासिता बढ़ जाएगी, और हम लोग फल से वंचित हो जाएंगे। इतना परिश्रम करके खर्च करके भी यदि हम वंचित रह गए तो फिर क्या होगा? इसलिए इन सब नियमों को देख करके चलेंगे। अच्छा, आप कहते हैं कथावाचक जबकि ये कथा हो जाए समाप्ति पर भक्तों को और ब्राह्मणों को भोजन कराए, उनको दक्षिणा से संतुष्ट करे। कथावाचक को, कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण इत्यादि गौ इत्यादि भी दें। इस प्रकार से विधि विधान से पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री घर पुत्र राज्य धन इत्यादि जो भी जिज्ञासा करता मिलता। किंतु एक बात और कह दिया, सकाम भाव बहुत विडंबना है। दक्षिणा की बात ही विडंबना की बात है। दक्षिणा में अपना तुम हृदय दे दो भगवान को, ये सबसे बड़ी दक्षिणा है। इससे तो प्रेम मिल जाएगा और दक्षिणा से प्रेम नहीं भाई मिलता। तो वहां जहां तक हो सके वंचना नहीं करनी चाहिए, अपने अर्थ के अनुसार में उनको देना चाहिए, बात ठीक है। किंतु वक्ता जो है वो इसमें कई भी लालसा न रखे, नहीं तो वो चित हो जाएगा, कोई भी लालसा न रखे। परंतु श्रीमद्भागवत की कथा ऐसी शोभा नहीं देती है सकाम, सुखदेव की तरह में कहा और सुना गया ही भागवत लाभदायक और निर्गुण होता है। हम लोग भी ऐसे सुनने की और वक्ता बोलने की चेष्टा करें सुखदेव और कुछ सखा के समान। कलयुग में श्रीमद्भागवत से बढ़कर के और कोई दूसरा शास्त्र नहीं। ये कृष्ण प्रेम को देने वाले हैं। स्कंद पुराण में संक्षिप्त में उनका जो महात्मा था हमने वर्णन किया, आप लोग सारा ग्राही हैं, आप इसको ग्रहण करेंगे और हम लोगों का भी ऐसा ही सुखदेव की भांति निर्गुण ये कथा हो सके। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, विघ्न बाधाएं आती हैं किंतु मैं समझता हूं कि भगवान की कृपा से इस वृंदावन धाम में और उसके हृदय रूपी इस सेवा कुंज में यहां पर कोई विघ्न की कोई संभावना नहीं। जमुना जी चारों तरफ से यहां पर हैं, अपने आप विघ्न रक्षक विघ्न हैं। यहां आप सब श्रीमद् भागवत सुने और उनका भी कल्याण हो, यही प्रार्थना कर। कभी कोई यदि विघ्न भी होता है विचलित होने की कोई भी जरूरत नहीं। वर्षा भी आ गई, हम लोग वहां पर कथा अपना जारी रखेंगे, इधर उधर पढ़ेंगे, आंधी भी आई कोई भी बात नहीं। इस तरह से हम लोग श्रीमद् भागवत का 8 दिन रखा गया है, ने? 8 दिन 9 दिन हम लोगों का ये पूर्ण होगा। वो तो 7 दिन का प्रोग्राम है किंतु 9 दिन में पूरा होगा। आप लोग बड़े प्रेम के साथ में इस प्रकार से भावना से आप लोग श्रवण करें, हम लोग श्रवण करें, सभी लोगों का पंचाकल्प उद्देश्य कल चक्षुर्मीतं येन अस्मै वञ्चाकल्पपरिग्रहस्य कृतासिंहभैरथ पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदानुजे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राप्तजं तमन्ते तमते चतुर्थ्यं द्वैपायनो विरहकातरया भाव पुत्रे पुत्रे तन्मयतया सर्वोभिनेतु तं सर्वभूतं बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग सेवा वृंदावन और उसके बीच में सेवा और सेवाकुंड में भी जहां दान गली, मान गली, प्रेम गली, कुंज गली, ये शब्द यहां पर जहां पर कि सब जगत के आराध्य है श्याम सुंदर समस्त और आरंभ अवतारी रजनकानंदन श्याम सुंदर जहां पर कि श्रीमती जी की सेवा करते हैं वो सेवा केंद्र के अंतर्गत हम लोग बैठे हैं। आज हमारे बंबई के बद्री प्रसाद खंडेलवाल श्री बद्री प्रसाद खंडेलवाल उनके सुपुत्र और उनकी पुत्र बहनें उनकी बहनें उनकी लड़कियां सभी परिवार बड़ी श्रद्धा के साथ में यहां पर श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ करा यह भी बड़े सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत वेदांत का उपनिषदों का श्रुति और स्मृति रामायण महाभारत सबका यह सार कल हमने इसकी महिमा के संबंध में इस स्कंद पुराण से हमने कुछ सुनाया था। अभी श्रीमान सुधानंद जी महात्मा के बाद महात्मा साधारण संक्षेप में और फिर श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ होता मैं कुछ कहना तो नहीं चाहिए तभी कुछ अस्वस्थ रहने के कारण मैं इतना देर तक छह छह घंटे मेरे लिए बोलना जरा असुविधा की बात है। इतने बीच बीच में मैं जहां आवश्यकता होगी मैं इसका प्रवचन करूंगा। सुमान शुभानंद जी भागवत भूषण है भागवत को देखने में छोटे सुखदेव स्वामी की मत जैसे मालूम पड़ते हैं किंतु बहुत ही प्रौढ़ विद्वान है सिद्धांतविद और वैष्णव भी गुरु वैष्णव के निर्मा सिन्होंने सुमद भागवत का विधिवत जैसे सुखदेव स्वामी ने व्यास के लिया उनके चरणों में बैठ करके भागवत की शिक्षा लाभ की थी ऐसे ही वैष्णव के चरणों में बचपन से ही भागवत के इत्यादि समस्त शास्त्रों का अध्ययन इन्होंने यदि भागवत सुनना चाहिए तो वैष्णव के मुख से ही सुनना चाहिए। मैं समझता हूं कि सर्वथा ये योग्य है आप लोग बड़े प्रेम के साथ में ये सब चीज सुनेंगे जहां जाकर होगा मैं समझूंगा आवश्यक वहां पर मैं कुछ बोलूंगा। पहले ये आप लोग समझ जाइए श्रीमद् भागवत ऐसा एक कल्प वृक्ष है कल्प वृक्ष नहीं बल्कि निगम कल्प करो वनकम फलम सुखमुखात अमृतवसंतम पियोग भागवतम समालयम बहुरहो रसिका भाविका। इसका पहले का श्लोक है जन्मादश्च जप अन्वयादि तर्पश्च इत्यादि उसमें समस्त वेदों का सार अर्थात ब्रह्म विद्या का वेदांत सूत्र के इतिहास से आरंभ करके उसी की भाषा व्याख्या में यह बताया ओंकार प्राण जो है वही श्री भगवान स्वयं उसी की व्याख्या गायत्री भी है उसी गायत्री का विस्तार वेदांत है और वेदांत का अर्थ या भाष्य ये श्रीमद् भागवत व्यास जी समस्त शास्त्रों का प्रणयन करने के बाद और उसका प्रकाश करने के बाद में वेदों का भी भाग करके महाभारत इत्यादि ग्रंथ की रचना करके फिर उनको तृप्ति नहीं हुई तो व्यास जी की कृपा से उन्होंने श्रीमद् भागवत को भक्ति योग से देखा भक्ति योगे मनसि सम्यक् प्रणीते अमले अपस्त पुरुषम पूर्णम बायां से जगा उन्होंने श्रीमद भागवत व्यास जी की कृपा से योग समाधि में उन्होंने दर्शन किया और अपस्वत पुरुषम पूर्ण पूर्ण पुरुष को देखा। पूर्ण पुरुष कौन है? समस्त अवतारों के मूल अवतार रसो वैसा रसस्तु स्वयं भगवान, समस्त देवताओं इत्यादि के ब्रह्मा इत्यादि के भी आराध्य के भी परमाराध, समस्त शक्तियों से समन्वित सर्वशक्तिमान, समस्त कारणों के कारण उनका कारण कोई नहीं, वो गजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही परतत्व है, अद्वैत ज्ञान परतत्व है। साथ में उनकी राधा जी को देखा, राधा जी के साथ में ललिता विशाखा इत्यादि अष्ट सखियों को भी देखा, उनकी जितनी भी शक्तियां हैं समस्त गोपियों को देखा, आराज करते हुए देखा, जन्म लीला से आरंभ कर द्वारका लीला में लीला संगोपन का सबको एकदम जाना कैसे रूप में देखा। देखने के बाद में उन्होंने ये भी देखा जो कि भगवान का भजन करते हैं कृष्ण का, वो लोग माया से पार होकर के जा रहे हैं कृष्ण के चरण में, वो लोग कुंडारण, और जो लोग भगवान का भजन नहीं करते विमुख हैं, वो लोग ऊपर से नीचे गिर रहे हैं माया में और उसमें जर्जरित होते हैं लाखों जन्म तक। ऐसे जीवों की कृपा करने के लिए भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की को प्रकाश किया। यह भागवत पहले चतुष्कों के रूप में नारायण जी से मिला नारद जी को, नारद जी से व्यास को, व्यास से फिर मिला सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित की सभा में सब लोगों को श्रवण कराया। यही पर तजस्यावई सूयमानायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रूपबद्धते पुंसत शोक मोह भया, शोक मोह और भय को दूर करने वाली भगवान के चरणों में पहले साधन भक्ति, पीछे से भाव भक्ति और अंत में प्रेम भक्ति, यहां तक कि ब्रज की अंतिम प्रक्रिया गोपियों के कृष्ण प्रेम को भी ये देने वाली श्रीमद् भागवत है। ऐसा उन्होंने कहा। भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी को कहा गया, उसमें कह रहे हैं निगम कल्प करो दलितम फलम सुगम का अमृत संगीत। ये सुखदेव गोस्वामी जी हैं कौन? साधारण अपने पुराण के पढ़ने से, श्रीमद् भागवत इत्यादि के देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये पहले नैर्गुण्य में प्रतिष्ठित थे, निराकारवादी ब्रह्मवादी ये थे। व्यास जी ने इनको राजा जनक की के पास में भेजा और सब शिक्षाओं के बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवत की शिक्षा स्वयं इनको दी थी। फिर पीछे उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव परीक्षित महाराज के सभा में, किंतु जब विशेष रूप से हम विचार करते हैं आंखों के सामने जब भी सब समय न रहे तो अच्छा, नहीं तो सिर्फ गड़बड़ हो जाएगा। जान तत्व से तो कम प्रयोग करेंगे, बहुत कम प्रयोग करेंगे। तो जब सुखदेव गोस्वामी के संबंध में हम विचार करते हैं, हाँ कथा का लाभ उठाए सब लोग अधिक आडंबर न हो जाए। सुखदेव गोस्वामी हैं कौन? इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं, ये नित्य मुक्त पुरुष थे, माया में वो नहीं थे। जी गोस्वामी के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि सुखदेव गोस्वामी जी हमारी प्रिया जी के परे प्रिय सुख थे। प्रिया जी माने किशोरी जी, राधिका जी, इनके बड़े प्रिय सुख थे। एक समय जब कृष्ण की लीला चल रही थी प्रकट लीला, उसमें यीशु राधा जी के हाथों पर बैठे हुए थे और राधा जी उनको अनार के दाने उनको खिला रही थी बड़ी कोमल कोमल, और उसके एक हाथ पर रखकर दूसरे हाथ से उसके पीठ पर हाथ घुमाती हुई कहलाती हुई कृष्ण कहो कह रहा। सुख पक्षी में यह विशेषता है कि वो जैसे जिस चीज का स्वर नकल करता है ठीक वैसे ही आवाज नकल करता है। राधा जी इस मधुर कंठ से कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण कह रही है, वो ठीक वसी तरह से मधुर कंठ से और जो भी कृष्ण कृष्ण कहने लगे ठीक राधा जी के स्वरों में और उनके स्वरों में कोई भी अंतर नहीं, अभिकल वैसे ही मधुर कंठ से वो भी कहने। थोड़ी देर में सुप उनके हाथों से उड़ गया और उड़ करके बरसाने से वो नंद गांव में पहुंचे। नंद जी के बगीचे में कृष्ण वहां पर बैठे थे, तमाल के वृक्ष पर वह बैठ गया जाकर के कृष्ण और मधुमंगल जी कुछ बातें कर रहे थे। ये उस सुख पक्षी उस तमाल वृक्ष पर बैठ करके तमाल की पत्तियों में ये हरा वो हरा दोनों मिल गए और उन्हीं से कहने लगा कृष्ण कृष्ण। कृष्ण तो राधा जी की बोली को समझते थे लेकिन राधा कहां से आ गई, इधर उधर देखने लगे, राधा जी को खोजने लगे और उनको देख करके ये सुख पक्षी कृष्ण कृष्ण कहा। बहुत उत्कंठा से देखने के बाद उन्होंने देखा तमाल वृक्षों की पत्तियों में हरे भरे में छिपकर और बरस मधुर कंठ से ये कह रहा है कृष्ण कृष्ण। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उसके पास धीरे धीरे पहुंच गए और बड़े मधुर शब्द से उसको पाठ बुलाने लगे और पाठ बुलाने से वो झट आ गया और कृष्ण के कंधे पर बैठ गया। कृष्ण ने उसको भी अपने हाथों में ले लिया और हाथ पर बैठा दिया। बोलो तो क्या कर रहे थे, फिर बोलो तो फिर वैसा ही कृष्ण कृष्ण। कृष्ण के आंखें छल छला है, ये राधा जी का स्वर कैसे निकल कर लिया, ठीक उसी रूप में बोल रहा है। थोड़ी देर के बाद में वो सुख कहता है क्या तो श्लोक में ही कह रहा है, श्लोक मुझे पूरा याद नहीं, उसका भाव यह है मेरी जैसा दुर्भाग्य इस पृथ्वी में किसी ने जन्म नहीं, मैं बड़ा ही दुर्भागा हूं, मैं प्रिया जी के हाथों पर बैठा था और बड़े स्नेह से हाथों को सहलाती हुई मुझे अनार का दाना चुराती हुई और बड़े कोमल और मधुर स्वर से हमने कृष्ण कृष्ण पढ़ा। मैं साथ जाति का भी भागा और जाति से चंचल उनके हाथों से टूट करके यहां पढ़ा। कृष्ण ने कहा जी क्या कहा तुमने, फिर से कहो तो। कृष्ण की तृप्ति नहीं हो रही, बार बार उसे उच्चार करा। इतने में दो किशोरियां वहां पर पहुंची, ललिता जी और मीसा जी। कृष्ण से बोली कन्हैया जी ये हमारे प्रिय का प्रिया जी का सुख, उसके बिना तो रह नहीं सकती, ये सुख उनका प्राण है, आप जल्दी से शीघ्र यदि उनको बचाना चाहते हैं तो इसको लौटा दीजिए। उन्होंने कहा मैंने थोड़ा इसको पकड़ा मेरे हाथ पर ये बैठा है, जिसका सुख है उसे बुला करके ले लें, किंतु जबरदस्ती किसी को लेने नहीं दूंगा, बुला ले उसको कोई बात। तो वो दोनों कहते हैं ऐसा विश्व में कोई प्राणी पशु पक्षी मनुष्य कोई भी है जो मोहन के हाथों पर बैठ जाए, उनके निकट हो और उनको कोई दूसरा बुलाने से आ जाए। हाँ एक है किंतु वो है यहां है, वो तो इस पक्षी को क्या सो पक्षी समेत उनको भी वो बुला ले, वो भी दौड़ करके उसके पास में चले जाएंगे, वो शांत जो है वो भी मदन मोहन खुद उनके पास में चले आएंगे इस सुख के समय, किंतु वो आए नहीं, इसलिए आप इसको दे। बहुत कहा पाने के लिए
انہوں نے نہیں دیا. کہتے جس کا ہے بلا لے, نہیں دیا تو وہ میا کے پاس میں. میا ہماری کشوری جی اس سکھ کے گرہ میں رو رہی ہیں, تڑ پڑا رہی ہیں. آپ شام سندر سے کہا کر کے ہم کو دلا دیں, نہ بیٹی بیٹھ جاؤ ابھی. بڑے سنیہ سے چمبن کر کے ان کو بیٹھا دیا, بیٹھ جائے میں ابھی لا دوں. یہ کہا کرتے جہاں پر کرشن اور منگل منگل جی باتیں کیے کرتے تھے, سکھ سے بات چیت کر رہے تھے وہاں پر, اور جھپٹے سے مار کر کے سکھ کو لے لیا. سب سمے چمبن کم کرتا ہے, گندی گندی چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہے. ابھی اس کو پکڑ لیا اور وہ ایک ہاتھ سے ان کو پکڑ لیا اور ان کو کھینچتے ہوئے, تمہارے پتا جو بھی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں آپ تم کے ساتھ میں کھیل رہے ہو, گندی گندی چیزیں. ابھی اسنان کرایا اور پھر تم نے اس کو پکڑ لیا. بس تھک کرشن سمجھ نہیں سکے, لے کر کے پکڑ کر کے لے آئی. اب کرشن کو وہاں پر بیٹھا دیا اسنان کرنے کے لیے, اور سکھ پکشی کو للتا وشاخا کو دے دیا. وہ لے کر یہی سو جب کرشن کی لیلا سماپت ہوئی, دیکھیے کیسے یہ رادھا کرشن دونوں کے پیارے. کرشن لیلاؤں کا سب سمے رادھا کے بلاس اتیادی تو سمست برج کی جتنے بھی لیلائیں ہیں ان کو سب کو دن رات استادن کر کے مت رہتے ہیں, کیسے ہی ان کے پیارے ہیں. جب کرشن کی لیلا سماپت ہوئی, کرشن لیلاؤں کو لے کر کے اپرکٹ برنداون میں جب چلے گئے گلو برنداون, اور سکھ کو آدیش دیا آپ کو یہیں پر رہنا پڑے گا, ہمارے ساتھ میں آپ نہیں جائیں گے, سب کو ساتھ لے جائیں گے, آپ رہیں گے یہاں. جیسے رام چندر جی نے ہنومان کو یہاں رکھ دیا, کس لیے رکھ دیا؟ ان کی کتھاؤں کا پرسار. اس لیے آپ کو بھی آنا نا اتنت آوشک ہے, اس لیے آپ کو جی آپ کے بنا تو میں رہ نہیں سکتا, اور سیمتی جی کے بنا میں رہ نہیں سکتا. کہ جیسے تیسے بھی کچھ دن کے لیے رہو, سیمت بھاگوت کا پرکاش کرنے کے بعد میں آپ کو چلے آئے. اب وہ سوکھ جی ان کا آدیش پالن کرنے کے لیے پتھی میں تو رہ گئے, کرشن کے لیے آپ پر دھیان ہو گئی, اپرکت لیلا میں چلی گئی. اب یہ پرتھوی میں گھوم رہے ہیں, کہاں کرشن کہاں رادھا ہے, ساری نہیں ہے. تو من سے سننا, پارپتی جی سنتے جی پرتھم اسکند آرمبھ کیا, دوسرا اسکند آیا کسی پرکار سے رہی, کچھ استری جاتی کے سوبھاؤ سے بھی جب سرشٹی اتیادی کا جب پرسنگ آیا نا, بھگوان کی ویوہار کی لیلا جس کو کہتے ہیں گونگ لیلا ہے, جب اس کا آرمبھ کیا, اور جب میترے اور ادھو کا سمواد, میترے اور ودھ کا سمواد جب کی سنانے لگے تو دھیرے 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 آلس سے آیا جم بھائی دے آئی, اور اس کے بعد میں سو گئے بیٹھے بیٹھے سو. کنتو کتھا بند نہیں رہی, ہنکاری جو بھر رہی تھی ہوں بہت اچھا بہت سندر آگے, تو وہ ہوں ہوں اوپر سے آواز آنے لگی. شنکر نے سوچا کہ یہ پاروتی جی کا ٹھیک جیسا وہ نقل کر کے ان کا سوار ویسی روپ میں کر رہا تھا, اس لیے شری جی کو سندیہ نہیں ہوا, اس لیے وہ سننے لگ وہ کہنے لگا ہوں ہوں ہوں. شنکر جی بڑے آنند کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے دیکھا نہیں کہ سوئی ہوئی ہے, وہ کتھا باتیں بھی ویسے ہیں. بھگوان کی کتھاؤں میں ایک دم تنمے ہو گئے, شریر کی شدھ بدھ نہیں رہی, کتھا چل رہی ہے. جب دسم اسکند سماپت ہوا, یہ کاغذ سماپت اسکند جب آیا تو پارپتی جی اٹھی, ارے میں نے تو سنا ہی نہیں, میں تو سو گئی, ذرا پھر سے کھانا تو راجے کا ہنکاری کون مرا, کس نے ہنکار کیا, दावों तर्क में शंकर जी खोजने लगे। अनाधिकारी को ये नहीं सुनना चाहिए, निष्पत समा करे जातु मनसा पी अनिश्वर, जो अनिश्वर है, जिनको मन जितेंद्रिय नहीं हुआ है, इंद्रियों को जीत नहीं लिया है, काम को लोभ लाभ मोह को जिन्होंने जीत नहीं लिया है, वो निर्गुण जो भक्ति परायण जो हूं वो उसकी अधिकार। इसलिए खोजने लगे जो कौन है, बहुत बारीकी से देखने पर देखा एक शुभ पक्षी बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर, हरे पत्तियों में एकदम छिप कर और वही हंकारी भर रहा है। बस त्रिशूल उठाया उसे मारने को और वहां से उड़ा और कथित बद्री काश्रम में पहुंच गया। वो भी समझता कि मुझको कहां जाना चाहिए कहां मुड़ करके, इसलिए झट वहां पर गया। शंकर जी भी उसके पीछे पीछे दौड़े और उसी पत्रिकाश्रम में पहुंचे। व्यास जी अपनी पत्नी बेटिका जी को भगवान की यही कथा श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे और वो आश्चर्यचकित होकर बड़े मुग्ध होकर के सुन रहे हैं और मुख थोड़ा सा खुला रह गया और शंकर जी उसको पीछा करते हुए जब वहां आए तो झट उनके मुख में प्रवेश कर गया, बेटिका जी के मुख में और उनके गर्भ में चला गया। शंकर जी आकर के कोई कहां गए किधर ध्यान तक तो उठ करके आए, इधर के बाद में कहां गया, क्या कैसे पूछा। अच्छा तो श्रीमद् भागवत की कथा का सुनने का फल क्या है, पहले तो अब व्यक्ति अजर अमर बन गया और कृष्ण का प्रेम पाकर के गोलोक वैकुंठ में पहुंच जाता है, उसका जीवन मरण जन्म मरण नहीं होता, तो जिसका जीवन मरण से उपलब्ध हो गया, जो अजर अमर हो गया, जिसने कृष्ण प्रेम को पाप किया कर लिया और वह परम भक्त जो भी है आप उसको कैसे मार सकते हैं। तो शंकर जी भी मुस्कुरा दिए, वो तो मर नहीं सकता, अजर अमर हो गया, फिर आप मारने की चेष्टा क्यों कर रही, आप भक्तों के प्रति तो ऐसा भाव होना ही नहीं चाहिए यदि भक्त हो गया। पर शंकर सिंह लज्जित होकर के काला ये सुखदेव गोस्वामी जी हैं, कोई कहते हैं 12, कोई कहते हैं 16 वर्ष का पत्नी माता के गर्भ में रहे। पिताजी ने कहा जी आप कौन है महाशय जी, आप जो कोई भी है माता जी को कष्ट मत दीजिए, अब तो गर्भ से बाहर हूं, भीतर सब आ जाइए, मैं ऐसे नहीं निकलता, माया के राज्य में मैं नहीं निकलूंगा जहां माया है, विश्व में सर्वत्र माया है, मैं इसमें नहीं निकलूंगा। कैसे निकलेंगे, यदि माया को कोई हटा सके तो उसमें निकलूंगा। व्यास जी ने कहा तो कैसे आप निकलेंगे, मैं हटा देता हूं माया को, आप कौन हैं, मैं व्यास हूं नारायण, आपसे नहीं होगा। यदि कृष्ण आए और वो कह दे कि माया को हटा दूंगा तो मैं मान लूंगा। व्यास जी ने कृष्ण की आराधना की और कृष्ण महाप्रस्थान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा जी अरे बच्चे तू गर्भ से निकला, आप कौन है, तो मैं कृष्ण हूं। उसने कहा जी आपके लिए हमारा खाना, मैं आऊंगा तो किंतु माया में ले नहीं आना चाहता। कृष्ण ने कहा कि मैं माया को एक तीक्ष्ण तलवार की धार पर एक सरसों गिराने पर जितने देर तक तर रखता है उतने देर के लिए माया को मैं हटा रहा हूं, तुम जल्दी से तुझे ठीक। बस जम ऐसा उन्होंने किया और सुखदेव उसमें से गर्भ निकले। जब वह प्रवीत नहीं हुआ, नारी संस्कार नहीं हुआ, जन्म संस्कार जात संस्कार भी स्वीकारते हुए भी नहीं हुआ, अनुपेत एक कृत्रिम वो कुछ भी नहीं हुआ, यंग प्रवजंतम अनुपेत अपेत कृत्रिम उनका कुछ भी नहीं हुआ और वो भरे। व्यास ने कहा इतना दिव्य लड़का गर्भ में रहते हुए सारी समस्त जितने भी ग्रंथ है वेद परिषद शास्त्र भागवत इत्यादि का श्रवण किया और जो व्यक्ति माया में भी नहीं आया और ऐसा पुत्र पा करके भी मैं ऐसा दुर्भागा हूं कि ये बन भी जा रहा है, मेरी छाती की सुमत भागवत का जो कांत है इस बच्चे को मैं सुनाऊंगा, किंतु ये सुधार करके चला जा रहा है। बड़े दुखी हो गए। जब चलने लगे तो वन में जाते हुए हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र कहा, और पीछे से प्रतिध्वनि भी वन की, हा पुत्र कौन पिता कौन पुत्र, हा पुत्र कहा, मैंने उसको चिहार लिया प्रतिध्वनि, कौन किसका पुत्र। सब मायाने लगे हुए हैं, एक पिता है कृष्ण, बाकी सब उसके पुत्र और सब वही सबके प्रियतम बंधु भाई सखा सब कुछ है, और जगत में ये सब माया मूल है। मनो प्रतिध्वनि ने कहा, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो चलते गए, पीछे से व्यास जी भी चलते गए, किसी प्रकार से पुत्र को ले आऊंगा और कहानी से मतबाद। थोड़ी देर आगे पहुंचे हैं तो व्यास जी ने देखा कुछ किशोरी अस्तराएं एक सरोवर में नंगी स्नान कर रही है। सुखदेव गोस्वामी आगे आगे जा रहे हैं, उनको देख करके कुछ भी उनके हृदय में तनिक भी कोई खोह नहीं हुआ। सुखदेव गोस्वामी पार कर गए तो व्यास जी श्वेत दाढ़ी वाले श्वेत केश वाले कितने बूढ़े पड़े, और वो लड़कियां इनको देखकर के लज्जित होकर के झट तालाब से निकलकर और कपड़े पहन करके व्यास जी को आकर के दूर से प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा कि पुत्रियों, मेरा लड़का नौजवान 16 वर्ष का, बड़ा सुंदर सुकांत, इतना तेज से निकल रहा है, उसको देखकर के तुम्हें लज्जा नहीं आई, कोई संकोच नहीं हुआ, कोई क्षोभ नहीं हुआ तुम्हारे हृदय में, और हमें देख करके तुम लज्जित हो गई, ऐसा क्यों। तो सुखदेव गोस्वामी जी को पता ही नहीं है कि लड़की है कि लकड़ी है न क्या है, लकड़ी और लड़की में कोई भी उनके लिए सब समय भगवत चिंतन करते रहते हैं, सर्वत्र सब में भगवान का दर्शन करते हैं, और सब भगवान ने सब जीवों को देखते हैं, ऐसे परम भागवत वो हैं, उनको जगत का कोई भी शुद्ध गुज नहीं है। आपने क्यों पूछा जो तुम लड़की हो और हमें देखकर के लज्जा नहीं आई, उनको देखकर के लज्जा नहीं आई, क्यों पूछा आपने, कोई है ना, कोई भेद तो जरूरी है स्त्री पुरुष का आपके अंदर में, क्योंकि उनके अंदर में कोई भी कुछ भी नहीं है, शायद ही काम मानते हैं। ऐसे ये सुखदेव गोस्वामी जी हैं, ये भागवत के अधिकारी हैं। जब वो वन में चले गए तो वेदव्यास जी ने कुछ बहेलियों को वो सुख पकड़ने के लिए कौशल करके उनको कुछ मंत्र पढ़ा दिया। मंत्र क्या था, बरहातीदं नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकार बिभ्रदवासं तमः कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेङ्गभर सुधया पूर्वं गोपवृन्द्या वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् भीतके। कृष्ण का श्रीमद् भागवत में क्या, भारतीय वन वाणी में जितना भी कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है, गोपियों ने प्रेम में विवश होकर के इस श्लोक को पढ़ा था, इसे बढ़कर के और कृष्ण के सुंदर माधुर्य पूर्ण वर्णन का कहीं भी कोई श्लोक नहीं है। तीन पाए जाते हैं भागवत में, एक तो श्यामं हिरण्य करोति, एक ये श्लोक नौमिध्यते अग्र बपुषे तरी दंबराय, और तीसरा है ये बढ़ा पीडम नतवर बपु, किंतु तीनों में भी यह सत्य रसमय परम मधु कृष्ण का सर्वांग सांगे पांग सुंदर ये लक्ष्य। सुखदेव गोस्वामी जी उन बहेलियों के इन श्लोकों को सुनकर इसे श्लोक को सुनकर के मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा ये तुमको मंत्र किसने सिखलाया, वो हमारे गुरु जी ने सिखलाया, ठीक है, कल उनसे कुछ करके आना, जिसका यह सुंदर गुण वर्णन है ये मंत्र है उसका गुण क्या है, थोड़ा सा उनसे कुछ करके आना। वो बहेलिए के जालों में बहुत से सुख पक्षी और बहुत से चिड़िया इत्यादि पड़ गई थी, बड़े प्रसन्न हुए, व्यास जी के पास लौटे, उन्होंने कहा
ये एक लड़का तुम्हें मिला नंद धनंद, बड़ा सुंदर, बड़ा तेजस्वी। उसने पूछा कि उसके गुण क्या है, किसका ये रूप है? तो उन्होंने उनको बताया, अहो वकीयम तनकाल कूटम जिघंसया पाय तप पशाद्री ले गति उचितांकोम कंगा दयालु। कितना को जो कि बाल खातनी रुधिर पान करने वाली, बच्चों का मान सौरभ पान करने वाली, वो भी कृष्ण को स्तन खिलाने के लिए गई, कालकूट विष पिलाता और उसको भातृ उचित गति दे दी कृष्ण ने, मातृ उचित गति, भातृ उचित गति। कितने बड़े दयालु हैं वो, उनको छोड़कर के दुर्भागा ऐसा कौन है जो दूसरे का भजन करेगा। विशेष करके ब्रज में रहने वाले व्यक्ति, ब्रज में जिनका जन्म हुआ, किसी प्रकार से आ गए, यहां पर शादी विवाह हुआ, अन्यथा सब संसार को छोड़कर के ब्रज में आए हुए हैं, कौन ऐसा दुर्भागा होगा जो ऐसे नंद नंदन गोपी बल्लभ अराधा बल्लभ कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, दूसरा किसका भजन करेंगे? इसलिए भजन करना है तो ब्रज में ऐसे श्याम सुंदर राधा बल्लभ का ही भजन सर्वोत्तम। तो इस तरह से जब सुना बर्थक आकर्षित हुए, उनके पीछे पीछे चल दिया और व्यास जी के हैं, व्यास जी के यहां पर श्रीमद भागवत का आदो पांच पचन पाठन किया और अंत में कहते हैं निर्गंधो अपि परिनिश्चितो, मैं निर्गुण ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में परिनिश्चित था, किंतु ऐसी कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं, इतनी सुंदर आकर्षक है, आत्मा रामाश्च मुनियो निर्गंथा उपक्रमे कुरुवंता है इथम भूत हूं। बड़े बड़े सब लोग ये द्वंद्व निराकारवादी भी कृष्ण के गुणों को सुनकर के आकृष्ट होकर के कृष्ण की लीला कथा की महिमा पर सुनकर के सुनते हैं और मैं ऐसे भी निर्गुण ब्रह्म से आकर के कृष्ण की लीलाओं में आकृष्ट हो गया और मैं कृष्ण का ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को ये कथा सुनाई। कैसे सुनाई, किस प्रकार से सुनाई, और सुनाम शुभानंद ब्रह्मचारी जी आप लोगों को कथा सुनाई। आज कुछ विलंब से आरंभ हुआ, कभी कभी सारे कर अभी हम लोग 12 बजे तक, आप लोगों को कष्ट ना हो तो आज 12 बजे तक और इसके बाद में भी 4 बजे से अभी बैठेंगे, आप लोग सब ठीक उसी तरह से आ जाएंगे। 4
उनके श्याम सुंदर के वक्ष पर तुम रंजित हो गया, तुम्हें तुम गुण क्या है वैदांत राधा भी हो खेल आनंद किए, जो उनकी प्रेम और भावना और सुंदर की जो स्थान भावना है, जो चिरताओं के अंदर में छिपा करके रहते हैं श्याम सुंदर, ऐसे अपने हृदय में जो भावना है शरद भावना प्रेम, उस प्रेम को उन्होंने इंगों के द्वारा उस हृदय से उभार करके बैठ कर दिया, सौ भक्त जनों के सामने राधा कृष्ण बिहारी के जो जी के रूप में विराजमान होकर के और अपने सुभा को विस्तार करते हुए श्रीमती प्रशोभान के प्रति जो उनका अनुराग व्यक्त कर दिया और साथ ही प्रिय उनका जो विशाल वृक्ष स्थल कैसा वृक्ष स्थल है जो कि नीले आकाश के समान, नवीन बादल के समान या नए नवीन दीवार के समान, ऐसे जो श्याम श्याम सर है, ऐसे श्याम बादल सर्व विशाल वृक्ष स्थल में कौस्तुभ नहीं जिसमें केवल प्रेम से ही लेते रह सकते, ऐसे विशाल वृक्ष स्थल में पसने के गुण पानी के गुण जैसे बादल शोभित होते हैं, इसी प्रकार अनुराग और प्रेम की भावना के द्वारा उन पत्नों के गुण के द्वारा
नमो महापतन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्तिषे यं प्रव्रजन्तमनुते तमतेत कृत्यं द्वैतायनो विरहपाकर्या गृहाम् पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेन तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानि कृष्ण। आज सवेरे से हम लोगों का श्रीमद् भागवत आरंभ हो गया, जिसमें हम लोगों ने संक्षेप में श्रीमद् भागवत का महत्व वर्णन किया, एक स्कंद पुराण से बतलाया और एक पद्म पुराण से हम लोगों ने बतलाया। हल्ला मत करो, हमने कल ये भी बतलाया पद्म पुराण के अंतर्गत जो फल महात्म्य बतलाया गया है वो सर्वसाधारण के लिए जिनको भक्ति का भान नहीं है उन लोगों के, वो अत्यंत अभ्य जैसे है। इस कर्द पुराण वाला जो बताया गया है वो भागवत की यथार्थ महिमा बताया, तब हमने इसको बताया। आज श्रीमद् भागवत हम लोग आरंभ कर परीक्षित महाराज जी की सभा में सुखदेव गोस्वामी कथा रहे, उसके पहले कुछ और बातें हुई हैं। श्रीमद् भागवत का आरंभ कर दिया पहले से ही, किंतु सुखदेव गोस्वामी जी का भाषण है उसके बाद में। पहले ही मैंने वंदना की मंगलाचरण के रूप में सुखदेव गोस्वामी जी ने जो व्यास में वंदना की, जन्म आदर्श के जगह अन्य आदि तरफ इत्यादि वंदना, इसके बहुत से हमारे टीकाकारों ने बहुत तरह की व्याख्याएं की, किंतु हमारे चैतन्य चरण अनुगत श्री जीव सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी और विष्णुनाचार्य ठाकुर जी ने जगत को एक नई दिशा दी, जहां पर यह बतलाया गया निगम कल्पतर गलितम फलम सुगम फाद अन्मुक्त संयुतम, जो रस ही रस है जिसमें छिलके रेशे और कोई भी चीज फेंकने लायक नहीं है, रस ही रस मत भागवत। तो उसमें जन्मादर्श का जतन इसका अर्थ यदि ये करें कि जिससे जगत का जन्म होता है, जिससे जगत की स्थिति होती है, पालन पोषण जो करता है और अंत में जगत जिसमें समावेश को चिंता हो जाता है सब जगत का, वो ब्रह्म है, ये ठीक जचता नहीं, क्योंकि ये तो स्थूल सृष्टियां हैं, किसी भी भक्त को लेकर के इसे क्या लेना देना है, जगत कहां से उत्पन्न हुआ कैसे, जो नित्य भगवान के पार्षद हैं
गोप गोपियां हैं या और सनक सनंदन जी ऋषि इत्यादि है, नारद इत्यादि है, उनको इनसे क्या लेना है? कभी साधारण लोगों के लिए ये जगत की सृष्टि जिससे होती है, उसका पालन पोषण जिससे होता है और अंत में जिसमें वो विलीन हो जाता है उसको कहते हैं ब्रह्मा। जतो इमान भूतानि जानते तेन जातानि जीवन्ति यत्रान्ता अभिशम्भिशन्ति तद्वि जिज्ञासा तद ब्रह्म इत्यादि करता है। उन्हीं से जगत की सृष्टि इत्यादि होती है, उन्हें इस विषय में सबसे अभिज्ञ है, जिसमें ब्रह्मा इत्यादि मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा को भी प्रेरणा देकर के उन्होंने श्रीमद्भागवत इत्यादि की प्रेरणा जिनके हृदय में दी, जिनकी महामाया योगमाया के द्वारा जल में अग्नि में और मिट्टी में एक दूसरे में अभाषित होते हैं, दूसरे वस्तुओं की भ्रांति होती है, सब कर्म कर्म जीवनी ये सब माया के अधीन जो प्रभु है वो अपने धाम में निरंतर सब समय लीला विलास में मग्न रहते हैं। मैं उनका नमन करता हूं, सप्तम कर्म भूमि उनका मैं ध्यान करता। किंतु रसिक वैष्णवों को ये अर्थ व्यक्तता नहीं। यदि श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरु के दलित फल हैं तो उन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु जी की भावना के अनुसार में उन्होंने इसका अर्थ यह लगाया, जन्म आदि जो जन्म आदि रसस्य जस्मा, आदिरस का जन्म जिसके द्वारा, आदिरस कहते हैं श्रृंगार रस को, मधुर रस को, गोपियों के कृष्ण के प्रति जो रस है तो आदिरस का जिसके जन्म हुआ। यूं तो रस पांच प्रकार के मुख्य और गौण रूप में शा शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधु, ये पांच मुख्य रस और शाम सात ये गौण हास्य अधिक करुण रौद्र भयानक विभक्त। यदि ये कृष्ण के साथ में संबंधित हैं तो ये रस है, कृष्ण के साथ में संबंधित नहीं है तो ये रस नहीं। तो जहां पर कि मधुर रस रहेगा वहां पर बारहों रस जरूर रहने के लिए पास उसमें सब रहे। तो आदि रस का जन्म जिससे हुआ, किन से हुआ? कभी कहते हैं कृष्ण से, फिर कहते हैं कि नहीं कृष्ण से अकेले नहीं हो सकता, राधा और कृष्ण दिन से यह मधुर रस आत्म रस कैसे प्रसाद है? अन्य गति रेखी मुख्य और गौण अन्य व्यतिरेक क्या है? जब राधा कृष्ण का दोनों का मिलन होता है विगास होता है, ये अन्य है, और जब इनका वियोग होता है तो ये गौण है अथवा व्यतिरेक। दोनों एक ही रस के दोनों और अनिवार्य पहलू है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। किसी किसी संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि केवल मिलन ही मिलन है। चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया नहीं, मिलन के साथ में वियोग जरूर होगा, वियोग के बिना मिलन कभी वर्षित नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत इत्यादि देखने जैसा प्रतीत होता है, रसन कृष्ण श्रीमद् भागवत में रास के प्रसंग में कृष्ण लीला से उनका ध्यान हो गए, गोपियां वियोग में मरी मरी जा रही, वो पेड़ों से लताओं से गुलमों से सबसे वो पूछ रही कृष्ण किधर गए। देखा अंत में लीला की अनुभूति में वो स्वयं कृष्ण बन जाती है और कहती है उतना को पकड़ लिया किसी एक गोपी को और उनका स्तन काम करने लगे, उनको नीचे गिरा दिया, मैं कृष्ण हूं और ये उतना है। किसी ने अपने कपड़े को अंगुलियों पर धारण कर लिया और कपड़े फहराने लगे, तब मैंने विवर्तन को धारण किया, देखो तो और सब कुछ, मेरी ललित गति तो देखो, मैं कैसे हंसता हूं, मेरे कटाक्ष कैसे हैं, जरा देखो तो। ये सब चीजें पागल में जाती है कृष्ण को, और उसके बाद में कृष्ण से मिलन होता है, तो वो मिलन बहुत आनंददायक होता है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है, यदि हम दोनों पहलुओं को नहीं मानेंगे तो प्रेम का एक पहलू नहीं रहेगा। इसलिए आद्य रस श्रृंगार रस का ये कृष्ण और राधा को मुख्य द्वारा अन्वय और व्यतिरेक, ये दोनों ही इस विषय में अभिज्ञ हैं। यहां तक कि कृष्ण है रस राग और श्रीमती राधिका क्या है महाभाव सब, और जब दोनों ये मिलते हैं तो रस राग महाभाव उत्पन्न हो जाता है, जो आज तक कभी नहीं उन ये उपलब्धि हुई। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव में चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद को इस चीज को दिखलाया और उसकी स्मृति कृष्ण लीला में राधा और कृष्ण से जोड़ी, इसलिए रसराज महाभाव। श्रीमद् भागवत में ऊपर से तो शब्दों के रूप में उल्लेख नहीं है किंतु है, इसलिए जिससे ये दोनों होते हैं वो ब्रह्माचार्य के हृदय में पहले बतलाया गया, उनकी प्रेरणा लेते हैं। यहां कहते हैं कि वो नहीं अवश्य ब्रह्म सुखदेव के हृदय में जिन्होंने स्फूर्ति की, तो इन्हें ब्रह्म रुपया जब आग कबे भी अंत जब सूर्य, तो इन्हें मैंने विस्तार किया किसके हृदय में, यदि कृष्ण और राधा जी दोनों असदया जाता है ना, जो राधा जी के ये सुख थे बड़े प्रिय, उनके हृदय में श्रीमद् भागवत रसमयी है उनकी स्फूर्ति की, अब तक इसको सुखदेव बोलने में समाप्त हो, अन्यथा ये सब चीजें नहीं बोल सकते थे, इसलिए तेने ब्रह्मदा ब्रह्म सुख हृदय रस ब्रह्म, रस ब्रह्म को सुख के हृदय में स्फूर्ति की, अब तब ये रस ब्रह्म को निगम कल्प करो गलितम फलम सुख मुखात अमृत और सुगम तक ही अन्यथा ये संभव नहीं। भगवान को कौन जान सकता है, भगवान की लीलाओं को भागवत को कौन जान सकता है, जिसको वो जना ले से जाने जहते जना, दूसरा नहीं जान सकते। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा बतला है, भगवान जिनको जना देते हैं अपने भक्तों को वही उनको जान सकता, अन्यथा नहीं जान सकता। इसलिए जना की तत्तम भगवान महिम न चंद एक वो अपनी चीरन विचिन्न, चीरकाल तक ब्रह्मा खोजते रहे आदि पाने के लिए भगवान का, और कमल लाल से ऊपर जा रहे हैं नीचे कोटि करोड़ों जन्म लग गए और फिर ऊपर में आए और घूमते रह गए, उनको कुछ पता ही नहीं चला, अंत में तप किया भगवान ने सरस्वती के द्वारा उनको गोपाल मंथन दिया और स्वयं बंसी के नाक से उनको काम गायत्री दी, और तब कहीं जा सकते वो कुछ समझ सके, अन्यथा नहीं समझ सके। इसलिए तेने ब्रह्मदा जो आग कभी मुहियंत जत, आग कभी एक सुखदेव गोस्वामी मुहियंत जत सू गया, जिसमें सब देवता लोग नित्य मुक्त महापुरुष भी मुक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा हमारे संप्रदाय के गुरु हैं आदि हैं, किंतु मुहियंती वो तो केवल सखाओं के लीला नहीं भूल गए, समझ नहीं सके, कृष्ण को साधारण एक बालक सा समझ लिया और उनको परीक्षा करने के लिए गए, उनकी और लीलाओं को देखना चाहा, एक वर्ष तक उनको भगवान ने घुमाया, ये सब देखते हैं, ब्रह्मा को घुमाया, शंकर को घुमाया है, वरुण को घुमाया है, जम को घुमाया, मैंने ऐसा कामदेव को घुमा दिया, जो कामदेव सबकी नाक में नकेल देकर के घुमाते हैं, उस कामदेव को भी उन्होंने नाक में नकेल देकर के चारों तरफ में घुमा दिया। ऐसे ही कृष्ण और राधा जी की लीला, इसी तरह से सब अपने धाम में जो कि सब समय इन लीलाओं के साथ में विराज करते हैं, दोनों समस्त शक्तियों के द्वारा परिवेष्टित होकर के ऐसे कृष्णचंद्र जी का है और राधा जी का ध्यान करता है यहां से। किंतु ये कैसा है धर्म प्रभुत वो अक्र परम निर्माण अंशकांड, ये भागवत कर्म कांड नहीं है, स्मार्थ कांड नहीं है, ज्ञान कांड के द्वारा समझ में नहीं जाएगा। भागवत में विशुद्ध परम सत्य निर्मल परमहंसों का धर्म का वर्णन किया गया, साधारण लोगों के लिए नहीं समझ सकते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट का जो इस लाइन में हो धर्म के मामले में उन लोगों के लिए है, साधारण लोगों के लिए नहीं, किंतु हम उसकी टांग खींच कर नीचे लाना चाहते हैं कर्मवाद में। ये कर्मवाद इसे तो सुनने से श्रीमद्भागवत कर्मवाद में कहां चला जाता है, करोड़ों करोड़ों हमारे पूर्व के साथ जो जितने सब सुन करके ऋषि मुनि से लेकर के देवता तक सब प्रकार हो जाते हैं, फिर जगत में माता के गर्भ में आकर के उसका कम का दूध नहीं पीना पड़ता, ऐसा भी सुनो निरस्त कुहुकम, ऐसे हैं यहां तक कि मुक्ति जैसे चीज को निरस्त कुहुकम, ये कुपक है मिथ्या जाल है, इन सबको दूर करने वाले श्रीमद्भागवत में केवल कृष्ण प्रेम की, कृष्ण प्रेम में भी वो राधा जी का प्रेम, श्रीमद्भागवत कृष्ण का ग्रंथ नहीं, कृष्ण के लिए तो बहुत से ग्रंथ बने हैं, ये केवल मात्र राधा जी का गोपी का ग्रंथ। जब हम खूब अच्छे तरह से विचार करते हैं तब कृष्ण किसके लिए कह रहे हैं, कृष्ण की सभी वंदना करते हैं, वो कृष्ण कहते हैं नकारे हम निर्भक संपूर्ण, मैं निकारी हूं तो भी जन्म लेकर के देता हूं जैसे आयु भी मैं निकारी, किसके लिए कारण वो भगवान कृष्ण, उद्धव की तो बात छोड़िए, बंदे नंद प्रदेश श्री नाम आशा भरो चरण रेण कुशा माम श्याम ये सब कारण, इसलिए श्रीमद्भागवत का तात्पर्य इसी गोपी प्रेम में विशेष करके राधा जी के प्रेम में भी थे, विशेष करके ये स्थान जी से बात हुई है उसी की यही महत्ता है, कृष्ण उनके चरणों में सिर रख करके और क्षमा मांग रहे हैं, उनकी कृपा की भिक्षा कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण छोटे नहीं हो गए, ऐसा ना समझे, ये प्रेम की ऐसी महिमा है, वो परब्रह्म भी ऐसा प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। इस महाभारत की ये कथा भी हम लोग सुनेंगे, अब धीरे धीरे शिष्ट प्रकरण और सब करते हुए अंत में दशम स्कंध में ये सब बातें अच्छी तरह से हम लोग स्पष्ट करेंगे, अब आप लोग गुरु गुरु सुने।
नारद जी भगवान के एक बार दर्शन पाया और उसके बाद में धीरे में डूब गए, भगवान ने आदेश दिया जब तक तुम्हारे अंदर में अनर्थ है काम क्रोध लोभ मोह तब तक मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा और मैं दर्शन नहीं दूंगा और मेरे नामों का कीर्तन करते हुए विश्व में सर्वत्र तुम विचरण करो, समय आने पर कहा जाएगा उसके सिर पर मस्तक पर पैर रख करके अवसर तुम्हारे पास नहीं, तो जिस प्रकार से वो कीर्तन करते थे हम लोग वैसे ही अज्ञ हैं, बाल है हमारी टोली बाल की है, बालकों की टोली है अज्ञों की टोली, इसमें कृष्ण को जरा बुलाओ तो कैसे आते हैं हमारी बाल टोली में,
सुना है मैंने मोहन कि तुम बंदी बजाते हो, सुना है मैंने मोहन कि तुम बंदी बजाते हो, तुम बंदी बजाते हो हमारी Oh
नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमात्र चरित्राय स्वार्षितानंच तालिने जुदुखे सदाताय नाम प्रेम प्रदाय वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृतासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय माम चरणान्तिके। भक्त्या विहीना पराधलक्ष्यै चित्ताच्युकामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्देऽनुमस्ते चरणारविन्दम्। परमाराध्यतम गुरु पार्षद की कृपा से, निशिंह जी की कृपा से, सर्वोपरि किशोर किशोरी जी की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से हम लोगों का श्रीमद्भागवत प्रवचन पहला दिन निर्विघ्न रूप से और बड़ी अच्छी तरह से बीती। मैं तो उसमें कुछ सुलक्षा देख रहा हूं। जब परीक्षित महाराज जी प्राय प्रवेशन के लिए गंगा के किनारे तट पर बैठे तो 88,000 ऋषि लोग वहां पर बिना बुलाए बिना किसी निमंत्रण के उपस्थित हो। उन्होंने किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया था, न व्यास को दिया, न नारद को दिया, न सुखदेव गोस्वामी जो पाठ करेंगे उनको भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया। और वो ना जाने कैसे जान गए और समस्त भारतवर्ष से क्या समस्त विश्व से कैस्पियन सागर से कश्यप जी भी पहुंच गए, कहां कहां से सब लोग वहां पर पहुंच गए। एक मिनट की देर न लगी वो बैठे और साथ साथ में बैठे। उन्होंने कहा जो ये अभिशाप जो मुझे मिला ये कौन कहता है जो अभिशाप है? भगवान का दर्शन करना सहज है किंतु ये भगवान के जो परम भक्त त्रिकालदर्शी जिनके देखने से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है, जिनके स्मरण करने से पवित्र हो जाता है, ये ऋषि मुनि लोग यहां पर आ गए जिनके दर्शन से भव बंधन दूर हो जाता है, कृष्ण का प्रेम लाभ हो जाता है, आज ये बिना बुलाए सब आ गए हमको दर्शन दे रहे हैं, तो ये कहां भी संपात हुआ? ये कभी भी अभिसंपात। इसमें नारद जी पराशर जो व्यास के भी पिता और गुरु हैं, वशिष्ठ जी जो व्यास से भी बहुत पहले सतयुग से हैं, मरीचि इत्यादि ऋषि लोग हैं, गौतम इत्यादि ऋषि हैं जिनका कभी भी विनाश नहीं होता, अजर अमर ये लोग हैं, सब वहां पर उपस्थित हो गए। कितने सौभाग्य की बात। तो मैं समझता हूं कि परम सौभाग्य की बात है जो इतने ऋषि मुनि लोग जो श्रीमद्भागवत इत्यादि के भी फल हैं, भगवान की आराधना का फल ऐसे संतों का मिला, आज अनायास ही मिल गए, इसलिए आज हमारा परम सौभाग्य। हम भी देखते हैं बिना बुलाए ही मथुरा और वृंदावन के अच्छे अच्छे लोग, विद्वान भक्त कीर्तन करने वाले लोग जिसमें सहज ही समागम नहीं होता उन लोगों का, हजार आप निमंत्रण दीजिए, ₹1,000 भी दीजिए तो नहीं आएंगे। और देखिए ये अनायास ही बिना निमंत्रण के भी ऐसे लोग सब, मैं समझता हूं जरूर कृष्ण जी भी राधा जी भी गोपियां भी यहाँ पर सब सुन करके कृपा कर रही हैं, वो सब उनका भी वरद हस्त है इसमें। समस्त भक्त लोग यहाँ पर हैं, ब्रजभूमि है, कितना हम लोगों का सौभाग्य है। इसलिए मैं आप लोगों के और अपना मैं सौभाग्य का वर्णन नहीं कर सकता। परीक्षित महाराज बैठे हैं और व्यास गद्दी पर उन्होंने स्नेह करके बैठा दिया अपने नाती जैसे, अपने गुरु के शिष्य का शिष्य का शिष्य उनको बैठा दिया। नारद जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, हर गौतम और उनके गुरु के गुरु नारद जी और व्यास जी भी बैठे हैं, सब लोग वहां पर बैठे हैं। अपरिचित जी कथा कह रहे हैं। अच्छा ये बतलाइए, गरिमा की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से नारद जी का वैशिष्ट है ना सुखदेव गोस्वामी का? 50 जन्म तक सुखदेव गोस्वामी को नारद जी कृपा कर सकते हैं और वो बैठे हुए और कहा जाए तुम्हारी कथा को। इसलिए मैं समझता हूं कि इन श्रोताओं को हम लोग कम न समझें, इसमें बड़े बड़े रसिक होंगे, रसिकानी भी होंगी, बड़ी बड़ी वैष्णव भी हैं, वैष्णवी भी हैं, वो कम जानने वाली नहीं है और न है। बेटी मधु ने तो श्रीमद् भागवत पर PhD और क्या क्या कर लिया। यदि इसको हम बैठा दें तो सचमुच में अद्भुत वो कर देगी। ऐसे ही यहां पर और भी सब लोग उपस्थित, इसलिए श्रोता लोग कम हैं और वक्ता भी बड़े हैं, ऐसी बात नहीं। उस सभा में यदि मैं रहता जाता जिस सभा में, तो मैं तो पहले नारद जी को प्रणाम करता, व्यास जी को प्रणाम करता जो श्रोता थे, और वशिष्ठ इत्यादि सब लोगों को प्रणाम करता, तो सुखदेव जी को स्वामी जी को पीछे करता उस सभा में। इसलिए श्रोता लोग जिनके दर्शन करने से ही हरि कथा अपने आप आती है, वो श्रोता लोग भी धन्य। परीक्षित महाराज जी श्रोता है, सुखदेव जी वक्ता है, ऐसा मत समझ लेना कभी कदापि जो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जी कम है और वो सुन रहे हैं, ऐसा कदापि मत करना। हम समझते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को यह इस जन्म में यह सौभाग्य नहीं था जो कृष्ण की गोदी में खेले, किंतु ये परीक्षित महाराज जी का सौभाग्य था कि नहीं, कृष्ण की गोदी में खेले, उनका लालन पालन किया, जगत चुंबन करता है कृष्ण का और वो चुंबन कर रहे हैं परीक्षित महाराज जी गोद में, लालन पालन कर रहे हैं।